أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث کتاب آموزش فلسفہ میں چل رہی تھی اور آج ہم نے اس کتاب کے مطابق درس نمبر 16 میں اپنی بحث کا آغاز کرنا ہے. اس درس کے اندر بعض اہم مطالب بیان کریں گے آیت اللہ مصباح حفظہ آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ کہ زبان پہ چونکہ حفظہ اللہ چڑھا ہے اور خدا رحمت کرے ان کی کہ چند دن پہلے ہی یعنی کچھ عرصہ پہلے ہی جن کی وفات ہوئی ہے. آیت اللہ مصباح اس 16ویں درس کے اندر مکتب کے جو انتہائی مشہور اور معروف ہے پازیٹیوزم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. پازیٹیوزم کیا ہے, اس کے مبانی کیا ہیں, ان کے دعوے کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ معرفت بشری میں اپنے دعوے رکھتے ہیں, یہ تمام بحثیں جو ہیں وہ ممکن ہے کہ یہاں تفصیل سے بیان نہ کی جا سکیں, لیکن مختصر طور پہ پازیٹیوزم کے بعض مبانی کو یہاں ذکر کر رہے ہیں. اور 16ویں درس میں پازیٹیوزم کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہماری بحث چل رہی تھی معقولات کے اندر. معقولات کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا, معقول اول, معقول ثانی فلسفی, معقول ثانی منطقی, اور ہم نے مفہوم کو تقسیم کیا تھا تصور اور تصدیق کے اندر. وہاں پر جب یہ بحث ہماری چل رہی تھی تو اس بات کا تذکرہ آیا کہ مغرب مفکرین کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے, ایک مکتب ایسا ہے کہ جو کلی مفاہیم کو نہیں مانتا. تو اب تک ہم نے جو دو درسوں میں مفاہیم کے حوالے سے بات کی, اس کی اقسام کے حوالے سے بات کی, اور پھر نومالیزم کو ہم نے بیان کیا کہ جو اصالت تسمیہ یعنی مفہوم کلی کے منکر تھے, ڈیوڈ ہیوم کے نظریے کو جو ہے وہ بیان کیا, یہ جو مختلف ہم نے بیان کیا تھا. آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ اس بحث کو مزید تھوڑا کھول کر بیان کریں, تفصیل تھوڑی سی دینا چاہ رہے ہیں انہی بحثوں کو کہ جو پہلے بیان کی ہیں, اور ضرورت بھی ہے چونکہ یہ مکاتب جو ہیں وہ اس وقت موجود بھی ہیں. 16ویں درس کا نام انہوں نے جو رکھا ہے, عنوان جو رکھا ہے وہ حس گرائی یعنی امپیریسزم. امپیریسزم یعنی حس گرائی, حس پسندی. اور جب بحث کا آغاز کرتے ہیں تو حس گرائی یعنی امپیریسزم کے اندر جو ایک اپروچ موجود ہے وہ کیا ہے, پازیٹیوزم ہے. تو یہاں پازیٹیوزم کو بیان کرتے ہیں, باقی جو امپیریسزم کی دوسری شکلیں ہیں ان کو یہاں ابھی بیان نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیوزم ایک جدید مکتب ہے امپیریسزم کے اندر سے, اور رائج بھی رہا ہے اور ابھی بھی ہے, اس کی جڑیں باقی مغرب مفکرین کے اندر, مکتب فکر کے اندر مغرب کے, تو لہٰذا اس کو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب آموزش فلسفہ کا آغاز کیا تھا تو بالکل ابتدا ہی کے اندر درس نمبر 3 میں جب ہم وارد ہوئے تھے تو وہاں تاریخ فلسفہ کے اندر تفکر فلسفی کی ایک تاریخی مراحل جو ہیں وہ بیان کیے تھے. وہاں پر فارسی کتاب کے مطابق 49 صفحے پر پازیٹیوزم کا تذکرہ کیا تھا ہم نے. اور اگر آپ یعنی میرے درسوں کے مطابق اگر اس کو دیکھنا چاہیں, سننا چاہیں, تو یہ پازیٹیوزم کو میں نے दर्स नंबर 11 में बयान किया था। तो वहाँ पर पॉजिटिविज्म के ऊपर मुख्तसर हमारी गुफ्तगू हुई थी कि जो आयतुल्ला मिसबाह रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की थी, वहाँ पर ऑगस्ट कॉम्ट के ऊपर गुफ्तगू हुई थी और वो किन मबानी का कायल था। मुख्तसर जो किताब में था, किताब से बाहर नहीं गए थे, जो किताब में था वो आपकी खिदमत में जो है वो बयान कर दिया था। आज मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि पॉजिटिविज्म दोबारा जो है यहाँ पर जिक्र हुआ है इसका, तो जो बहसें हमने पॉजिटिविज्म की जब बहस हुई थी किताब के मुताबिक तीसरे दर्स के अंदर, वहाँ बयान नहीं की थी, मैं चाह रहा हूँ कि आज यहाँ पर उसको बयान किया जाए, ताकि एक तालिबे इल्म जब ये फ़लसफ़ा पढ़ रहा है तो इस मकतब से सही तरीके से आशना हो सके। अगरचे ये एक बहुत वसी मकतब है, इसको एक दो दरसों के अंदर खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन फ़कत एक आशनाई की हद तक जो है वो चंद चीज़ों को यहाँ बयान करना ज़रूरी है। जैसा कि दर्स का उन्वान बता रहा है कि पॉजिटिविज्म की बुनियाद जो है वो एम्पेरिसिज्म है, हिसगिराई व हिस पसंदी है, और हिसगिराई के अंदर हिसगिरा जो हैं वो किस बात के कायल हैं? वो कायल हैं कि इंसान की तमाम मारिफतें कि जो वो जहाने खारिज के बारे में रखता है वो तजुर्बे से हासिल होती हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम तारीख फलसफा पे बात कर रहे थे तो दो बड़े मकतब मौजूद थे, एक तजर्बा गिरा थे, एम्पेरिसिस्ट थे, और एक रैशनलिस्ट थे। एक असालत आकल के कायल थे, आकल को मुकद्दम मानते थे, जिसके अंदर डिकार्ट व अमसाले डिकार्ट शामिल होते हैं, और इनके मुकाबले के ऊपर क्या है, बा एम्पेरिसिस्ट थे, हिसगिरा व तजर्बा गिरा थे, हिस पसंदी उनकी रविश जो थी वो हिस्सियत वाली थी, हिस वाली थी, यानी हवास को फकत महवर बनाते थे और आकल के उस माना में कायल नहीं थे जिस माना में रैशनलिस्ट जो हैं वो कायल थे और डिकार्ट मसलन कायल था, या उस तरीके से। कि तफसील से चूंकि इसके ऊपर हमारी बात हुई है निस्बतन, तो यहां उसका तकरार करना जरूरी नहीं समझता। तो आकल गिरा कायल थे कि इंसान के पास बाज मतालिब होते हैं, बाज मफाहिम होते हैं कि जो इंसान फितरती तौर पर अपने पास रखता है, यानी अज इब्तिदा जिंदगी उसके पास मौजूद होते हैं, जैसे ही वो खल्क होता है ये मफाहिम उसके साथ मौजूद होते हैं। कांट का भी यही नजरिया है, डिकार्ट का भी यही नजरिया है, और इसके अलावा बाज और मुफक्किरीन का भी, कि जिनको रैशनलिस्ट के नाम से याद किया जाता है, और ये मकतब है रैशनलिज्म का।
मतलब ये जो आपने फितरी का है, फितरी का माना क्या, ये मफाहिम साथ लेके आते हैं या जहन की साख कैसी है?
फितरी के अंदर जो डिकार्ट का नजरिया है वो यही है कि शुरू से हैं इनके साथ, और कांट भी जो है वो तकरीबन इन फितरी मफाहिम को भी यही कहता है कि ये जो मकूलात हैं इंसान के जहन के अंदर ये उसके फितरी हैं, यानी उस इंसान उन मकूलात को लेकर आता है, यानी ऐसा नहीं है कि बाद में ये मकूले जहन में उसके आते हैं और फिर उन मकूलों के तहत वो क्या करता है, वो जहान को समझता है ना, मकूले पहले से मौजूद, यानी कहता है कि जहन की जातियात में से हैं वो मकूले। इसका मतलब यह है कि ये इंसान के अंदर पहले इब्तिदा ही से जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में जो एम्पेरिसिस्ट थे, मसलन फ्रांसिस बेकन है, जॉन लॉक है, बार्कली है, डेविड ह्यूम है, ये जो माहिरीन थे एम्पेरिसिज्म के मकतब के, ये कायल थे कि इंसान जब खल्क होता है तो उसका जहन बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल एक सफेद कागज की तरह है, बाद में फिर इंसान क्या करता है, इसके अंदर नक्काशी करता है, इसके अंदर जो है फिर सूरतें भरता है, बनाता है, रंग भरता है इसके अंदर। वो क्या है, इंसान अपने जहन के अंदर मालूमात को कैसे लेकर आता है, इंसान की मालूमात व मारफतें कैसे बढ़ती हैं इस नफ्स के अंदर, इस जहन के अंदर कैसे मालूमात आती हैं, तो उसके लिए जो ये वाहिद रास्ता जिसको ये मोतबर मानते हैं वो फकत हिस है। और वो भी हिस भी कौन सी, हवास से जाहिर वाली, यही जो जाहिरी हवास हमारे पास हैं, यही जाहिरी हवास जो हैं मोतबर रास्ता हैं एक मोतबर मालूमात लेने के लिए। इसी में वो उसको मुनहसिर करार देते हैं। ये जब अब ये जो एम्पेरिसिज्म का मकतब है, एक पूरी दुनिया है ये, आप इसके अंदर अगर आप शुरू करें तो जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम तारीख फलसफे में बात कर रहे थे तो इनसे पहले भी तजर्बे के हवाले से बात हुई थी कि फ्रांसिस बेकन से पहले भी ऐसे गुजरे हैं माहरीन के जो हिस के ऊपर एतमाद करते थे और बाकी रास्तों के एतबार के कायल नहीं थे, लेकिन फ्रांसिस बेकन से तजर्बा गिराई जो है ये ज़्यादा जो है इसने रुश्त किया। फ्रांसिस बेकन के बाद जिसने इस नज़रिए को आगे लेकर चला वो जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने दो अहम किताबें अपनी लिखी हैं और उसके अंदर अपने इस मकतब को जो है वो तरवीज किया है, और डिकार्ट के ऊपर जो कि फितरी मतालिब का कायल था, मफाहिम का कायल था, एतराज़ात किए उसने कि उनकी किताबों के मैं नाम यहाँ लिख के नहीं लाया, क्योंकि मद्देनज़र ये नहीं है कि हम पूरे मकतब को डिस्कस करें और उनकी किताबों का तारुफ करवाएं। तो जॉन लॉक जैसे ही आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसकी अहम तरीन किताबें जो हैं वो आ जाएंगी। जॉन लॉक फिर उसके बाद इस मकतब को आगे बार्कली लेकर चला है, जॉर्ज बार्कली, के ये भी हिसगिरा ही के अंदर शुमार किया गया है इसको। और जिसने अपने सही माना के अंदर एम्पेरिसिस्ट होने का हक अदा किया है वो डेविड ह्यूम है। डेविड ह्यूम ये सही मानों में हिसगिरा था, एम्पेरिसिस्ट था। इसने हर उस चीज का इनकार किया कि जो तजुर्बे के अंदर नहीं आती। मसलन अगर आप जॉर्ज बार्कली को देख लें, इसको एम्पेरिसिस्ट कहा जा रहा है, मकतब एम्पेरिसिज्म इसका बयान किया जा रहा है, लेकिन आप इसके अगर जिंदगी का मुताला करेंगे तो ये खुदा को मान रहा है। लेकिन जब हम डेविड ह्यूम के ऊपर आते हैं तो डेविड ह्यूम एम्पेरिसिस्ट है सही माना में, हिसगिराई यानी हिसगिराई। अगर मैंने ये तय कर लिया है कि मारिफत का सही मंबा, सही सोर्स, मोतबर सोर्स जो है वो हिस है, तो फिर जो चीज हिस से आएगी मैं उसी को मानूंगा, जो हिस से हटकर होगी चीज वो मेरे नजदीक बातिल है। लिहाजा उसने खुदा का इनकार किया, उसने इल्लियत का इनकार किया, उसने जरूरत का इनकार किया जो इल्लत और मालूल के दरमियान पाया जाता है, और इस तरह के बाकी सारी चीजें आकर आते हैं, यानी सही माने में डेविड ह्यूम। और ये जो तजर्बा गिराई है ये डेविड ह्यूम ने औज पर पहुंचाई है। और यूं भी कहा जा सकता है, और बल्कि कहा गया है कि पॉजिटिविज्म की असल जो जड़ें हैं वो डेविड ह्यूम के इसी रविश के अंदर मौजूद हैं। तजर्बा गिराई जो डेविड ह्यूम में मौजूद थी, चूंकि पहले बयान किया आपको कि इससे पहले भी अफराद जो हैं वो तजर्बा गिरा थे, एम्पेरिसिस्ट थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने मबना से हट जाते थे। जैसे बार्कली के बारे में कहा है कि खुदा को मान रहा है, तो लिहाजा पॉजिटिविज्म की जो जड़ें हैं वो क्या हैं, वो इस डेविड ह्यूम की तजर्बा गिराई के अंदर मौजूद हैं सही माना में। वाहिला बाज अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो वो बाकियों की तरफ भी इशारा करेंगे, यानी ये आप कह लें कि پازیٹیویزم کا اگر تاریخچہ بیان کرنا ہو تو امپیریسزم مکتب جو ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ پہلے فضا روشن ہو کہ پازیٹیویزم سے پہلے جو ہے وہ کیا صورتحال تھی، کون کون سے مفکر سامنے آئے، کیا کیا نظریات انہوں نے دیے، اور پھر پازیٹیویزم جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے یہ پھر وجود میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ڈیوڈ ہیوم وہ پہلا فلسفی تھا امپیریسسٹ کہ جس نے آ کر ما بعد الطبیعہ یعنی میٹا فزک کا انکار کیا، مطلق طور پر کسی بھی معنی میں میٹا فزک کو قبول نہیں کیا اس نے۔ یہ ایک تاثیر تھی اس کی۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو کانٹ کا فلسفہ آتا ہے۔ اب آپ کو دیکھیں آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں کتنی منطقی ترتیب سے کتاب لکھی ہے کہ پہلے تین درسوں کے اندر پورا تاریخ فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا ہے مختصر انداز میں۔ کیوں؟ تاکہ جب جا کر مکاتب میں بحث آئے گی، اسکول آف تھاٹس کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو ان کو سمجھنا آسان ہو جائے آ کر۔ اب آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہم ورود کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تاریخ فلسفہ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے۔ کانٹ کا فلسفہ جب ہم دیکھتے ہیں آ کر، تو ہمیں ایک چیز جو تاریخ میں ملتی ہے فلسفے کی وہ یہی ہے کہ ایک فلسفہ جو کانٹ کا ہے اس نے بھی پازیٹیویزم کے اوپر بڑی تاثیر گزار رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کانٹ کے فلسفے میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ کانٹ نے عقل کو کیا ناتوان ثابت کیا تھا، کہ عقل قادر نہیں ہے کہ انسان اس عقل کے ذریعے اشیاء کی ذات اور حقائق کی معرفت حاصل کر سکے۔ عقل نظری، جس کو یہ پیور ریزن کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور اپنی کتاب اس نے نقد عقل محض، اس کے اندر جو ہے وہ تمام ادلہ اور جو ہیں وہ برہان ذکر کیے ہیں کہ جس کے ذریعے اس نے عقل نظری کی، عقل محض کی اعتبار کو جو ہے وہ ختم کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ اس عقل کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ انسان کو خارج میں جو اشیاء موجود ہیں اس کی حقیقت تک رسائی دے سکیں، یہ صلاحیت نہیں ہے عقل میں۔ اور یہی مبنا جو ہے کانٹ کا زمینہ ساز بنا، اس نے زمینہ فراہم کیا مختلف اپروچ کہہ لیں ان کو یا مختلف مکاتب کہہ لیں۔ مثلا سائنٹسزم یہیں سے نکلا کر کہ سائنٹسزم کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو حس جو ہے وہ معتبر قرار دیا جاتا ہے اس میں۔ سائنٹسزم کے اندر سائنس کی جو ہے وہ اہمیت کے قائل ہو جاتے ہیں اور فلسفے کو باطل مانتے ہیں۔ سائنٹسزم کس کے مقابلے میں ہے؟ فلسفے کے۔ درست ہے؟ یعنی ہاں ہاں حس و تجربے، اپروچ ان کی کیا حس و تجربے والی ہے۔ سائنٹسزم جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے جو چیز معتبر ہے اور آپ کی جو مشکل حل کرے گی آ کر، یا مشکل حل کریں گے جو علوم، وہ سائنس ہے۔ سائنس سے ہٹ کے آپ کے لیے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، آپ فلسفہ بیکار ہے۔ درست ہے؟ آپ دیکھیں بعض سائنسدانوں کو جا کر تو ان کی یہ سٹیٹمنٹیں آپ کو مل جائیں گی آ کر۔ سائنٹسزم یہ سے نکل، چونکہ عقل نظر، فلسفے کا تعلق ہے عقل نظری کے ساتھ، عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عقل محض کے ساتھ۔ تو جب کانٹ کے فلسفے نے آ کر دلیلوں کے ساتھ رد کر دیا کہ یہ اعتبار نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فلسفہ بیکار ہے، پھر فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا سائنٹسزم جو ہے وہ یہاں وجود میں آئی۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور مکتب جو ہے وہ سامنے آیا، کریٹیکل ریشنلزم، کہ جس کو آپ اگر فارسی میں کتابوں میں مطالعہ کریں گے، عقل گرائی انتقادی، کہ ان کے ہر ایک کی اپنی تفاصیل ہیں، میں ورود نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ہم اپنی کتاب سے دور ہو جائیں گے، میں فقط زمینہ سازی بیان کر رہا ہوں کہ پازیٹیویزم کس طریقے سے جو ہے وہ وجود میں آئی ہے آ کر۔ اسی طریقے سے पॉजिटिविज्म जो है वो भी मुतासिर हुई कांट के इस मबने से, क्योंकि पॉजिटिविज्म ने भी आकर क्या है फलसफे के ऊपर क्रॉस लगा दी। आप कभी पॉजिटिविज्म के माहिरीन की किताबों का मुताला करें और मखसूसन लॉजिकल पॉजिटिविज्म के जिसके ऊपर हमारी अभी गुफ्तगू होगी, वो फलसफे के एतबार उसके एतबार के कायल नहीं है आकर। तो लिहाजा कांट की तासीर जो है वो इस तरीके से हुई बाकी मकातब फिक्र के ऊपर जो बाद में वजूद में आए, और उसमें से एक क्या है पॉजिटिविज्म है। ये था उसका तारीखचा के किस तरीके से जमीना फराहम हुआ कि बाज मुफक्किरीन पॉजिटिविज्म के ऊपर जाएं, पॉजिटिविज्म का जो मकतब है वो वजूद में आए। अभी हम आकर दूसरी बहस करते हैं, वो ये कि पॉजिटिविस्ट किसे कहते हैं, पॉजिटिव यानी क्या, ताकि पता चले कि पॉजिटिविज्म मकतब कहना क्या चाहता है। आकर अगर आप डिक्शनरी के एतबार से चलेंगे तो आप किसी भी तरीके से जो है वो नतीजा नहीं ले पाएंगे। पॉजिटिव हमारे मुहावरों के अंदर भी और रियाजी के अंदर भी किस चीज के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव यानी मुस्बत, और आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को मद्देनजर रखें वहां भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे मुहावरों के अंदर और हमारी उमूमी फजा के अंदर पॉजिटिविज्म यानी एक मुस्बत और नेगेटिव यानी मनफी, और जब हम किसी निगाह के बारे में कहते हैं कि ये पॉजिटिव निगाह रखता है तो मुस्बत निगाह के माना में आता है, ये नेगेटिव निगाह रखता है यानी मनफी निगाह रखने के माना में आता है। तो जब आप इस तनाजुर में आकर आगे चलेंगे तो पॉजिटिविज्म का मतलब तो फिर समझ में नहीं आएगा, वो कहेंगे कि ये कोई मुस्बत बातें करते हैं, ठीक है ये मनफी बातें नहीं करते, मसलन यूं तर्जमा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। पॉजिटिव अगर आप कदीम इंग्लिश की डिक्शनरियों की तरफ रुजू करें जाकर, एक तो ये हमारे पास जो राइज हो गया है वो है, मैंने देखा है कि पॉजिटिव जो है इसका मुकाबिल जो है वो कौन था, ख्याली मोहूम और फर्जी अफकार, दुरुस्त है, यानी इनका मुकाबिल ये था। तो पॉजिटिव फिर क्या माना हो जाएगा, पॉजिटिव का यानी वो अफकार के जो तीन खसूसियतें रखते हों, एक यकीनी हो, दो साइंटिफिक हो, तीन मिसदाक खारिज में रखते हों, इसको कहते हैं पॉजिटिव। तो अब जब पॉजिटिव का माना मालूम हुआ तो इसका मतलब या पॉजिटिविस्ट किसे कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि पॉजिटिविस्ट वो शख्स है कि जिसकी मालूमात साइंटिफिक हैं, यकीनी हैं, और वो मालूमात जो रखता है जो साइंटिफिक हैं और यकीनी हैं वो खारिज में अपना मिसदाक रखती हैं, जिसको हम अरबी में एक ताबीर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं, मा बे इज़ाए खारिज रखते हैं, यानी खारिज में उनका अपना अलग से मिसदाक है, हर मालूम का अपना एक मिसदाक मौजूद है, उसको हम कहेंगे ये पॉजिटिविस्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी मालूमात में ये तीन खसूसियात जो हैं वो पाई जाएंगी। तो अब यहां पे क्या हो जाता है, पॉजिटिविज्म जो है वो वाज़े हो जाती है, पॉजिटिविज्म से हमारी क्या मुराद है, और यहीं से फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पॉजिटिविज्म जो है वो क्या है, वो हिस गिराई का एक एक्सट्रीम वर्जन है, इफराती वर्जन है। यानी हिस गिराई के अंदर बहुत ज्यादा जब इन्होंने इफरात किया और एक्सट्रीम हो गए ये इसके अंदर, तो ये सामने आए हैं पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविज्म का मकतब जो है वो वजूद में आया है, क्यों? क्योंकि ये हर चीज को इस हिस्से जाहिरी के अंदर जो हैं वो महदूद करते हैं, और जो चीज जो है वो इस हिस्से जाहिर में नहीं आती है उसके बारे में वो साकित नहीं होते, बल्कि बुतलान की लाइन लगा रहे हैं, क्रॉस लगाते हैं उसके ऊपर, ये है ही नहीं है। और ये पॉजिटिविस्ट है, पॉजिटिविज्म है जो कायल है कि फकत वही जुमलात माना रखते हैं कि जो हिस के दायरे में आते हों। जैसा कि मैंने अपने उस पुराने एक दर्स में जो 11 नंबर दर्स मैंने अर्ज किया और किताब के मुताबिक 3रा दर्स बनता है, इस मतलब को वहां भी बयान किया था, अगर कि पॉजिटिविज्म का यह दावा है कि वो जुमलात फकत मानादार हैं और माना रखते हैं, मफहूम रखते हैं कि जो हिस के दायरे में आते हैं, और जो हिस के दायरे से बाहर हैं वो बेमाना हैं, असलन उनका कोई माना ही नहीं है। अगर आप ये जुमला बोलते हैं कि खुदा वजूद रखता है, कोई माना नहीं है इसका। यानी हम ऐसा ही है जैसे एक जुमला बेमाना आप इस्तेमाल करते हैं उल्टा सीधा जो है वो, और उसका समझ में नहीं आता। एक और ताबीर के साथ मैं बयान करता हूं पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिविज्म के इस इस्तिलाह को खोलने के लिए, वो यूं बयान है करते हैं कि एक वाकियत उस वक्त पॉजिटिव होगी जब हम अपने हवास की गवाही से इस बात कर सकें। जब हम क्या करें, उस वाकियत को अपनी हवास की गवाही से यानी हिस के जरिए मुशाहदा करें तो उसको इस बात कर सकें, और जब हम उसको मुशाहदा कर रहे हैं तो वो चीज जिसको हम मुशाहदा कर रहे हैं वो गैर काबिल इनकार हो, क्योंकि जहरी बात है जो चीज मैं देख रहा हूं मेरे मुशाहदे में आ रही है, मेरे हिस के दायरे में आ रही है, ये इनकार के काबिल नहीं है। तो फरमाते हैं मोरद मुशाहदा के जो गैर काबिल इनकार है, वाकियतों को मुनज्जम करके मुशाहदे की बुनियाद पर, मुशाहदे की बिना पर नजरिया दे सकें मुनज्जम अंदाज में। यानी आप क्या करें, पहले एक वाकियत है उसको आप मुशाहदा कर रहे हैं जो कि काबिल इनकार नहीं है, ये जो वाकियत या वाकियतें हैं इसको आप क्या करें, मुनज्जम करें, किस बुनियाद पर, मुशाहदे की बुनियाद पर, और फिर नजरिया इस्तेखराज करें, एक नजरिया दें आप पहले मुशाहदा करें नज्म दें, फिर उसको आप एक नजरिया तौलीद करें, इसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। आप देखें यहां पे भी क्या है, हिस की गवाही की मदद से ही आपने पहुंचना है, वहां पर कैद लगी हुई है इसके अंदर। बस यहां पर यह नतीजा निकलता है कि पॉजिटिविज्म यह इफराती शक्ल है। किसकी आप कह सकते हैं, नेचुरलिज्म, तबीयत गिराई, मेटेरियलिज्म या मेटेरियलिज्म, मादियत पसंदी और साइंटिसिज्म, कि इनका हर एक का अप्रोच क्या नाम है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है इनके अंदर, इनका मैदान जो है वो अलग है। एक चीज में मुश्तरक है ये सारे, क्या, हिस गिरा हैं। चाहे आप साइंटिसिज्म ले लें, चाहे आप मटेरियलिज्म ले लें, या आप क्या है नेचुरलिज्म ले लें, नाम इनके जुदा जुदा उनके खास मैदानों की वजह से हैं कि अभी उसका मौका नहीं है कि उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की जाए, के बाज की तरफ जब वो इशारा कलाम जदीद के एक दर्स में जो है वो बात हुई थी कि जब नेचुरलिज्म को हमने खोलकर बयान किया था तो वहां भी रुजू कर सकते हैं आकर। तो ये तकरीबन ये जो शक्लें हैं मुख्तलिफ हिसगिराई की, उसकी आप कह लें इफराती शक्ल जो है वो ये पॉजिटिविज्म बनती है आकर। ये पॉजिटिविज्म, इसका बानी कौन है? अब जब हमारे लिए वाजे हो गया कि पॉजिटिविज्म कहते किसे हैं, उसकी सलाह हमारे लिए वाजे हो गई। अब तीसरी बहस ये आती है कि इस पॉजिटिविज्म मबने का बानी कौन है। तो जैसा कि हमने अपने दर्स में बयान किया है, 3 नंबर दर्स जो कि किताब के मुताबिक, उसमें यह बयान किया कि पॉजिटिविज्म का जो मकतब है वह ऑगस्ट काम्ट इसका बानी है। और सबसे पहले पॉजिटिव लफ्ज को फलसफी माना में इस्तेमाल भी ऑगस्ट काम्ट ने किया है, और इसने फिर मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं कि इसके ऊपर मुख्तसर सी बात जो है वह हम अपने उस दर्स में बयान कर चुके हैं कि ऑगस्ट काम्ट के ऊपर मजीद गुफ्तगु यहां पर करना मकसूद नहीं है। ऑगस्ट काम्ट ने जब पॉजिटिविज्म का मबना मकतब जो है वो वजूद में लेकर आया, तो फिर इसके बहुत सारे पैरोकार वजूद में आए। उनमें से एक अहम तरीन पैरोकार जो है वो अर्नेस्ट माख है। अर्नेस्ट माख एक बहुत बड़ा मुफक्किर गुजर के गया है, और मैं शायद उसकी यहाँ पे तारीखचे वो तारीख नहीं लिख पाया शायद कि अर्नेस्ट माख जो है वो किस ज़माने में ज़िंदगी गुजारता था, और ज़्यादा पुराना भी नहीं है। मसलन ये इसने भी क्या है इसी ऑगस्ट काम्ट के इस मबने को जो है वो आगे लेकर चला और बेहतरीन अंदाज में इसको बयान किया आकर। ये पॉजिटिविज्म का जो मबना था ये चलता गया, तो एक मरहला 1922 से 1930 के अंदर वजूद में आया कि जहां पर एक पॉजिटिविज्म ने एक और रुख इख्तियार किया, और उसको कहा गया लॉजिकल पॉजिटिविज्म, यानी मंतकी पॉजिटिविज्म। फारसी में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविज्म में मंतकी कहा जाता है इसको। ये कैसे वजूद में आया कि जब जंग जहानी अव्वल हो चुकी थी और जंग जहानी दुव्वम अव्वल के दरमियान में ये एक बहरान जो एक आया हुआ था बशरियत को लाहिक हुआ, और मारफती बहरान भी आया, तो बहुत सारे मुफक्किरीन सोच रहे थे उसमें आके। तो बाज मुफक्किरीन इकट्ठे हुए कि जो क्या करते थे वियन के अंदर, जो शहर वियन है, वियन उसके कॉफी शॉप के अंदर इकट्ठे होकर गुफ्तगू करते थे, और इनकी गुफ्तगू किसके नजरियात पे होती थी, अर्नेस्ट माख के ऊपर। अर्नेस्ट माख के बाज नजरियों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुआ करती थी इनकी। पहले ये मुख्तसर अफराद थे, आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर इजाफा होना शुरू किया गया, और इनका फिर नाम पड़ गया वियन सर्कल। पूरे उस पूरे जो गिरोह का नाम था क्या पड़ गया, वियन सर्कल, के जिसको फारसी में आप पढ़ेंगे हलका वियन। वियन सर्कल के जो अफराद थे इन्होंने फिर क्या किया, नजरियात दिए बाज के, जिनको बाद में पॉजिटिविज्म लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहा जाने लगा। कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है बाज चीजों में मुख्तलिफ है पॉजिटिविज्म से। आप उसको कह लें क्लासिकल पॉजिटिविज्म, और ये जो 20वीं सदी के अंदर वजूद में आई है ये है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इस्तेमार उसी का है लेकिन फर्क है। मसलन अर्नेस्ट माख मसलन बाज रियाजी के मसाइल को हल नहीं कर पा रहा था, लेकिन इन लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने आकर जो है वो उसको हल करने की कोशिश की है। तो इन्होंने फिर पूरा एक बयानिया दिया अपना, उस बयानिए के अंदर बाद इन्होंने अपने वो नताइज तहकीक के जो है वो बयान किए, और उसकी इतनी तासीर हुई कि बहुत ज्यादा मुफक्किरीन वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अंदर जो है वो यानी चले गए, उस नजरिए के कायल हो गए, और बड़े शद्दोमद के साथ जो है वो इसकी तरवीज की जाने लगी लॉजिकल पॉजिटिविज्म की। कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म के भी अपने मबानी हैं, कि जैसा कि बयान किया कि नहीं बयान कर सकते उसको यहां पर, चूंकि अगर पॉजिटिविज्म कोई खोलने लग जाए फिर हर हर मबने को खोलने लग जाए जाकर तो ये काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस बहस को तफसील से पढ़ना चाहते हैं, और अगर खुदा ने तौफीक दी तो उस मौजू के ऊपर बात होगी, तो उसमें साइंटिफिक फिलोसफी के अंदर या मसलन फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर मखसूसन जो है पॉजिटिविज्म के ऊपर کافی تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے کہ اگر توفیق ہوئی کبھی تفصیل سے تو وہاں بیان کر دیں گے، وائلہ آپ اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو معرفت شناسی کی بعض اپیسٹمولوجی بحثیں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن زیادہ آپ کو جو تفصیلی بحث ملے گی آ کر وہی فلسفی آف سائنس یا اور سائنٹیفک فلسفی جو ہے وہ ان کتابوں میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو مل جائیں گے آپ کو مطالب اس میں. تو یہ لاجیکل پازیٹیوزم، اگر آپ یہ لاجیکل پازیٹیوزم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو ان کے جتنے بھی افراد تھے اس وی این سرکل کے اندر ان کے نام موجود ہیں باقاعدہ، ان کے صورتحال بیانیہ بھی موجود ہے کہ آپ وہاں سے بھی اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ پازیٹیوزم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اب کہہ رہی ہے کہ فقط اور فقط وہ معرفت معتبر ہے کہ جس کو ہم حس کے ذریعے حاصل کر سکیں، اور وہ جملہ معنی رکھتا ہے کہ جو حس کے دائرے میں آ جائے، اور جو حس سے ماورا ہے حس کے دائرے میں نہیں آتا وہ بے معنی ہے، اصلا ایچ و پوچ ہے، اصلا کوئی وقت نہیں ہے اس کی. اور یہی اسی طرز تفکر نے آ کر انسانوں کو دین سے دور کیا اور کر رہا ہے، فلسفے سے دور کیا. آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ فلسفے سے دور ہو چکا ہے، نہ فقط ہمارا معاشرہ جو مسلم دنیا کا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں اگر فلسفہ جو ہے وہ بہت کم رنگ ہے اور کم لوگ جو ہیں وہ فلسفے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ اسی قسم کے مبانی ہے کہ جو امپیریسزم سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پازیٹیوزم لاجیکل پازیٹیوزم کے اوپر آ کر رکا، اور ابھی تک یہ سلسلہ باقی ہے اور فلسفے کی اہمیت کو جو ہے وہ کم رنگ کر دیا گیا آ کر. لاجیکل پازیٹیوزم اس وی این سرکل کے افراد ابھی زندہ تھے، موجود تھے، انہی کے زمانے کے اندر متعدد مفکرین نے پھر ان کے اوپر رد کرنا بھی شروع کیا. مثلا اگر آپ جا کر ایک اہم ترین شخصیت کو دیکھیں، کارل پوپر، اس نے آ کر کیا کیا ہے پازیٹیوزم کے، لاجیکل پازیٹیوزم کے اس مبنے کو جو ہے وہ رد کیا ہے اور ایک نئے مبنے کو جو ہے وہ بیان کیا آ کر، فالسیفائی ایبیلیٹی جس کو کہتے ہیں، ابطال پذیری، فالسیفائی ایبیلیٹی، اس مبنے کو وہ لے کر آتا ہے. لاجیکل پازیٹیوزم نے جس اصل کو بیان کیا تھا آ کر اس مبنے کو یہ رد کرتا ہے کہ یہ تو اصلا قابل دفاع نہیں ہے. اسی طریقے سے میں ایک اور مطلب جو ہے یہاں پر جلدی جلدی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کہ یہ بحث ناقص نہ رہ جائے اور پھر ہم اپنی کتاب کی طرف آئیں گے. آج اتنا ہی کافی ہے پازیٹیوزم کے بارے میں، کہ بہت سارے مفکرین ہیں کہ جو پازیٹیوزم کے منکر ہوئے، یعنی پہلے وہ اپنی زندگی میں پازیٹیوسٹ رہ چکے ہیں اور پھر بعد میں انہوں نے پازیٹیوزم کو چھوڑ دیا. چونکہ ہمارے اس ایسٹ کی ایک مشکل یہ ہے، مشرق زمین کی ایک مشکل یہ ہے، مستقل چونکہ نہیں سوچتے، جو ان کے لیے پلان کیا جاتا ہے یہ اسی کے مطابق چلتے ہیں، تو لہٰذا یہ جنہوں نے پلان کیا ہے انہی کے مطابق ہی سوچتے ہیں اور ان سے باہر آ کر سوچتے نہیں ہیں. تو محسوس یہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت حاکم چیز ہے وہ بس یہی پازیٹیوزم ہے، مثلا یہ ایک بہترین جو ہے وہ مکتب ہے اور یہ پوری بشریت کی مشکلات کے لیے کیا ہے، منجی ہے، یعنی مسیحا ہے یہ مکتب، اور اس کو بڑے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ نقل اور بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ افراد इस बात को नहीं देख रहे होते हैं कि जब ये मकतब वजूद में आया है, जब इसके माहरीन अपने नजरियात को बयान कर रहे थे, तो आया उस मुआशरे के अंदर जो मुफक्किरीन उनसे भी बालातर थे या उनके पाए के थे, उन्होंने इसको कबूल भी किया या नहीं किया। अगर रद्द लिखे गए हैं तो उन रद्दों का मुतालआ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक मुनसिफ मिजाज की खासियत यह होती है कि वो दोनों तरफों का मुतालआ करता है। अगर बाज मुफक्किरीन आपको मिल रहे हैं कि जो पॉजिटिविज्म के हामी हैं, तो आप अगर यह फैसला करना चाहते हैं कि पॉजिटिविज्म जो है वो मकतब सही है या गलत है, तो आपको जो मुखालिफ है पॉजिटिविज्म के उनका भी मुतालआ करें। मुमकिन उनकी दलीलें मजबूत हो और इनकी दलीलें बातिल हों, और जैसा कि है जिस वजह से लॉजिकल पॉजिटिविज्म जल्दी खत्म हो गई। आप अगर पॉजिटिविज्म का मुताला करें, आपको तारीखें बकायदा मिलेंगी, चूंकि ये इसी 20वीं सदी की तो बात है, तो लिहाजा तमाम चीजें जो है वो मौजूद हैं, आपको इंटरनेट पे भी, किताबों के अंदर भी जो है वो अवेलेबल हैं, आप उनका दिक्कत से जो है वो मुताला कर सकते हैं। तो आपको एक शख्सियत जो बयान की है कि मारूफ तरीन शख्सियत थी, वो क्या है, कार्ल पूपर है। अगरचे आप देखेंगे कि बाज मुफक्किरीन कार्ल पूपर को भी पॉजिटिविस्ट जो है मारूफ करते हैं कि ये भी पॉजिटिविस्ट है, लेकिन कार्ल पूपर अपनी किताब में कहते हैं कि मैं नहीं हूं, मैं पॉजिटिविस्ट नहीं हूं। इसी तरीके से एक बड़ी शख्सियत और हाइजनबर्ग के जो बहुत बड़ी शख्सियत है एक साइंस की दुनिया की, वो 1929 के अंदर जो है वो एक गुफ्तगू करता है, उसके अंदर वो पॉजिटिविज्म के ऊपर एतराजात अपने बयान करता है। इसी तरीके से आपको एक और साइंसदान आप ले लें, प्लैंक के जो एक बड़ी शख्सियत है, इसने इनामात भी लिए हैं अपनी तहकीकात के ऊपर, यह भी पॉजिटिविज्म के ऊपर एतराज करता हुआ नजर आता है। आइंस्टाइन के जो फिजिक्स की दुनिया का बाबा माना जाता है और है भी, ये आइंस्टाइन पहले पॉजिटिविस्ट रहा है, दिफा करता था पॉजिटिविज्म के मकतब का, लेकिन बाद में फिर इसने पॉजिटिविज्म का जो है वो इनकार किया कि 1915 के अंदर जब इसने जर्नल रिलेटिविटी जो है वो बयान की, जिसको निस्बत आम कहते हैं, इसका एक मशहूर नजरिया, इसको जब इसने बयान किया तो वहां पर आकर ये पॉजिटिविज्म का जो है वो इनकार करता है, उसके ऊपर तनकीद करता है। इसी तरीके से एक और बड़ा नाम वाइनबर्ग, इसने भी पॉजिटिविज्म का जो है वो उसके ऊपर उसकी मुखालफत की है, उसके ऊपर अपने जो तनकीदी और मुखालफती बयानात हैं वो बयान किए हैं, और इन सब की स्टेटमेंटें मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, इनकी तकरीरें मौजूद हैं, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, इनको आप मुताला करें तो आपको एहसास होगा कि जिस तरीके से पॉजिटिविज्म के मकतब को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, कैफियत इस तरीके से नहीं है। इंशाल्लाह फिर बाकी मतालिब किसी और मुनासबत से बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।